ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। समय कितना है दूरी? हरे कृष्णा। आई वाज आस्किंग वेदर इट इज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। कथा ब्रेकफास्ट इज 1 आवर, लंच इज 4 आवर्स, डिनर इज 2 आवर्स। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हमारा आवाज कम है, आवाज साउंडलेस, द डायरेक्शन इज गोइंग डाउन। ओके, थैंक यू। राधा रानी का जो विषय है ना, ये बहुत ही गहन विषय है। अधिक तौर पर बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किए बिना राधा रानी के विषय में सुनना यानी केवल मनोरंजन के स्तर पे जा सकता है एट द मोस्ट। और अगर बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किए बिना राधा रानी के विषय में कुछ सुनते हैं ना आम जनता में, तो उसमें अपराध ज्यादा होते हैं, लाभ कम होता है। क्योंकि फिर हम राधा रानी और कृष्णा और गोपियों को एक साधारण जीव समझते हैं। ऐसा लगता है कि लवर्स चुप चुप के मिलते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना समुद्र किनारे इधर उधर, तो वो हमको लगता है कि वैसे ही है। इसलिए इस विषय को समझने के सुनने के पहले बहुत सारी जरूरतें हैं। सबसे पहले जरूरत है अच्छी साधना। अगर हमको ये विषय वास्तविक रूप में समझना है, तो अगर टाइम पास में समझना है तो फिर हमारे पास या तो मंदिर में या कहीं आने की जरूरत नहीं। जनता के पास बहुत सारा मटेरियल है आपको बहकाने के लिए, है ना। और एक तरह से ये विषय में बिना तैयारी के सुनना भी बहुत डेंजरस है। जैसे लोकल हिंदी में कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, वैसे हम सुनेंगे और लाभ के बगैर हमारा नाश हो सकता है, आध्यात्मिक विनाश हो सकता है। क्योंकि ये किसी के सामान्य व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में कथा नहीं है। ये हमारे परम पूज्य अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान, ओलोकेश्वर परात्पर भगवान जो है, उनके एक निजी जीवन के बारे में ये चर्चा है। राधा रानी उनका निजी जीवन है और उनके संबंध के विषय में, प्रेम के विषय में, लीलाओं के विषय में श्रवण करने के लिए अगर योग्यता नहीं होगी तो हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए कुछ 5 मिनट कम से कम उस पर हम खर्च करेंगे कि बिना नाम साधना किए हुए इस विषय में किसी को कोई गति प्राप्त नहीं हो सकती। और साथ साथ में हमने संतों से सुना है कि इस कथा को सुनते समय एक भोग की तरह नहीं सुनना चाहिए, एंटरटेनमेंट क्या कहते हैं ना उसको, यू वांट टू अम्यूज अवरसेल्फ। सब लोग दुनिया में क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं डिज्नीलैंड जाते हैं, इधर पार्क जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, यू वांट टू एंजॉय एवरीथिंग, यू वांट टू एंजॉय। तो राधा का विषय जो है वो एंजॉय करने का विषय नहीं, उसको हम उसकी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, ये विषय आदर की भावना से सुनना चाहिए, विथ ऑ एंड रेवरेंस। भले उसमें मनोरंजन हो वो आपको मिलेगा अपने आप ही, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं सुनना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए, सेवा भाव से नम्र होकर और बिल्कुल भोग की भावना न होते हुए सुनना चाहिए। तब जाकर ये इस विषय का जो इच्छित परिणाम है जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। वो इच्छित परिणाम क्या है, हृदय की शुद्धि और राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम, उनके चरणों के प्रति समर्पण, ये इसका इच्छित परिणाम है, डिजायर्ड रिजल्ट। और वो अगर आपको चाहिए तो उसके आपके लिए अनुकूल तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर समय तो वेस्ट होगा ही और आध्यात्मिक नुकसान भी होगा। और रूप गोस्वामी इसमें भक्ति के साधन चंद्र में इतने लंबे तरीके से समझाते हैं कि ये प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। श्रद्धा के साथ साधु संग करना है, साधु संग में हमको भजन क्रिया सेवा सीखना है, सेवा करते करते अनर्थ की निवृत्ति होगी, अनर्थ की निवृत्ति होने के बाद में अनशेकेबल, इसको हिला नहीं सकते, ऐसी निष्ठा उत्पन्न होगी। फिर निष्ठा के बाद में थोड़ी बहुत रुचि निर्माण होगी, रुचि के बाद में आसक्ति होगी इस विषय में, फिर भाव निर्माण होगा, और फिर बहुत दूर की बात है ये सब, भाव और प्रेम बहुत दूर की बात है, चर्चा करने के लिए अच्छा है लेकिन अनुभव करने के लिए बहुत दूर की बात है, बहुत विरला होता है ये सब। और उस प्रेम का गंध यानी जस पहचान अनुभव के रूप में होने के बाद में वो भी आगे एक सागर है, अथाह सागर है प्रेम का। उसमें गाय भगवान से कैसे प्रेम करती है, मोर कैसे प्रेम करते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर भूमि भगवान से कैसे प्रेम करती है, पेड़ कैसे प्रेम करते हैं भगवान से, पंछी कैसे प्रेम करते हैं, फिर सखा लोग कैसे प्रेम करते हैं, फिर माता पिता जैसे लोग जो हैं, नंद बाबा, उपनंद बाबा, अभिनंद बाबा, इनकी पत्नियां गोपियां, वो कैसे प्रेम करते हैं। उसके बाद में आता है माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम, और उसमें कितने स्तर हैं, कितनी प्रकार की गोपियां हैं, सहचरी हैं, किंकरियां हैं, सखी है, परमेश की सखी है, फिर अष्ट सखी है, फिर राधा रानी है। फिर राधा रानी के विषय में फिर आगे आगे आगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो चैतन्य चरितामृत में जो चर्चा है ना रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, जो कोवूर नाम के स्थान पे हुई थी, वो हमको उसका अभ्यास करना चाहिए। फिर हमको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं उस चर्चा में, उस चर्चा के अंदर है कि नहीं, पहले देखना पड़ेगा, मतलब हमारा कोई इसमें अंतर्भाव है। अगर थोड़ा सा बहुत है शुरुआत में कहीं, तो आपको पता चलेगा कि उसका अंत किधर है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का डिस्कशन कहाँ अंत हुआ, कहाँ वो समाप्त हो गया, पर कहाँ कहाँ उन्होंने आगे कहो आर, आगे कहो आर सुनाते गए, और वो आगे कहो आर में भी उन्होंने बहुत उच्च उच्च बातें कर रही थी, फिर भी वो आगे कहो आर, इसके भी आगे बताओ, इसके भी आगे बताओ। और उस चर्चा का जो परमोच्च स्थान है वो राधा कृष्ण की प्रेम संबंध का स्थान है। और इसमें कहा गया है कि राधा रानी का स्थान जो है वो सर्वोच्च है, श्री कृष्ण पूरी पूरी निर्माण में सर्वोच्च है, हम सब जानते हैं ईश्वर परम कृष्ण, सब सब ईश्वरों के परम ईश्वर है, हर एक वस्तु का निर्माण उनकी तरफ से, भौतिक जगत में हो आध्यात्मिक जगत में, परात्पर भगवान है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्र भी नहीं हिल सकता है इस विश्व में, इतने बड़े नियंत्रक हैं वो, सर्वलोक महेश्वरम। तो वो जो परम भगवान है जो सब सब वस्तुओं के मालिक हैं, स्वामी हैं, वो इनकी दासता करते हैं। इसलिए इस विषय को आम जनता में चर्चा नहीं करते क्योंकि ये समझने बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और अगर समझ में नहीं आएगा ना तो उससे अपराध हो सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर वो मैटर खत्म नहीं होता, वहां से अपराध शुरू होते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे इमोरल बिहेव कैसे कर सकते हैं, अनीति पूर्वक व्यवहार कैसे कर सकते हैं भगवान हमारे, ये भी कोई भगवान का व्यवहार है? तो इसलिए बड़ी सावधानी से, नम्रता पूर्वक, अपराध शून्यता की भावना से इन विषयों का श्रवण करना चाहिए। मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिख रहे थे। अभी देखिए जयदेव गोस्वामी तो 8वीं सेंचुरी में थे शायद, इधर है 6th or 8th सेंचुरी है ना। सो वो उधर चंपाहाटी नाम की जगह है नवद्वीप में, बहुत सुंदर स्थान है, वहां पर वो लिख रहे हैं अपनी कुटी में बैठकर। और कैसा लिख रहे हैं, कल्पना नहीं करके लिखने रहे वो। अभी आपकी पटकथा कैसे लिखते हैं, सोच सोच के लिखते ना, कुछ ऐसे ही झूठ मूठ की कथा लिखते हैं। उनको साक्षात्कार हो रहा है, वो देख रहे हैं भगवान की लीला को अपने दृष्टांत में देख रहे हैं और उसको काव्य में उतार रहे हैं। कैसे व्यक्ति होंगे वो सोचो, यानी इमेजिन, एक तो भगवान का दृष्टांत लीलाओं का उनको हो रहा है, ऊपर से वो काव्यात्मक रचना कर रहे हैं, सबसे उच्च काव्य है वो गीत गोविंद, उसका विषय भी इतना सर्वोच्च है, बहुत गहन विषय, आम व्यक्ति उसको पढ़ने के लिए भी योग्य नहीं। तो वो लिख रहे हैं तो उसमें उनको एक दृष्टांत हो रहा है कि राधा रानी रूठी हुई है और कृष्ण उसको बना रहे हैं। इसमें बरसाना धाम की और राधा रानी की महिमा भी आती है, इसे मैं बता रहा हूं। बरसाना धाम कितना विशेष है, गौलोक धाम के अंदर वो जो प्रकट होता है पृथ्वी पर भौम वृंदावन, उसके अंदर जो बरसाना नंदगांव कोकिलावन जावट एरिया है वो बहुत ही स्पेशल एरिया है। उसमें श्री कृष्ण स्वयं जाकर लोटपोट हो जाते हैं, बाकी जगह हम सब लोग देवता लोग ऋषिगण सभी जितने भी ध्यानी तपी तपस्वी सब कितने भी लोग हैं वो कृष्ण की रज प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाते हैं और वहां के रज लेते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं उस रज में लोटपोट होने के लिए। तो जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए पूरा विश्व के महान महान लोग आते हैं वो बरसाने जाते हैं, उनके वो समझते हैं इसे, उनका भाव है कि मेरे उन्नति के लिए, मेरे उत्कर्ष के लिए, मेरे उद्धार के लिए मैं राधा रानी के चरणों की रज चाहता हूं, इसलिए वहां जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, अश्रु बहाते हैं उस रज में जहां पर राधा रानी ने अपने चरणों से विहार किया है। अभी वो रूठी हुई नजर आ रही है उनको जयदेव जी को, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपना मोर मुकुट जो है ना उनके चरणों में रख रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई युद्ध में तो होता है ना, तो किसी राजा को परास्त करते हैं तो पहले वो अपना मुकुट निकालकर उस विजयी राजा के चरणों में रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी कुछ नहीं हूं, मैं राजा था, अभी राजा नहीं हूं, अभी मैं आपका दास बन गया, मेरा राज मुकुट जो है वो आपके चरणों में समर्पित है। तो श्री कृष्ण तो कोई देश के राजा नहीं है ना, श्री कृष्ण तो पूरे निर्माण के राजा है, सृजन के राजा है, और वो अपना जो मुकुट है वो चरणों में रख रहे हैं। आई एम नथिंग, कितनी नम्रता होनी चाहिए आपको बताएं, अगर हम किसी छोटे से गांव के भी मुखिया होंगे ना तो कितना गर्व होता है उनको, ये तो पूरे पूरे ब्रह्मांडों के भौतिक जगत के आध्यात्मिक जगत के पूरे गिरिजा नदी जितना भी निर्माण है उनका सबके राजा है वो, अपना मुकुट उनके चरणों में रखते, फिर भी नहीं मान रही है। फिर क्या कर रहे हैं वो, जो अभी मुकुटहीन जो शीश है उनका वो चरणों में झुका रहे हैं। स्टेप नंबर टू फिर भी नहीं मान रही है, फिर वो रो रहे हैं और रो के अपने नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं उनसे राधा रानी के दो सुनहरे दिव्य चरण कमलों का अभिषेक कर रहे हैं। भावना क्या है, प्लीज फॉरगिव मी, जो भी है माफ करो, जो भी स्वीकार करो, रोटना छोड़ दो, फिर भी नहीं मान रही। और ये दृश्य जो है ना, जयदेव जी को देखकर बहुत एक अजीब सा संकोच हो रहा है। इज लाइक टू मच एम्बेरस्ड, ही हैज सम डिफिकल्टी इन बिलीविंग आल्सो कि ये सच है क्या, ये कैसे हो सकता है। परम भगवान गोलोकेश्वर, जिनकी इच्छा के बिना कोई कदम कोई पत्र भी नहीं हिलता है, वो ऐसा कर सकते क्या? ऐसे कोई व्यक्ति हो सकती है जिसके लिए वो ऐसा कर सकते हैं? तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम पीएचडी करते हैं और वो थीसिस लिखते हैं ना, तो दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, बहुत इट्स लाइक टू हैवी, वी नीड अ ब्रेक। तो ब्रेक चाहिए हमको, फिर हम जाके कहीं ठंडे पानी में स्नान करेंगे, कहीं पैर पानी बहते हुए पानी में छोड़ के बैठेंगे ताकि थोड़ा सा हीट निकल जाए। तो वैसे ये आध्यात्मिक टेंशन आया एक प्रकार का, कैसे बताया मैम, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम लोग को पीएचडी में समझ सकते हैं, एमबीबीएस एमडी पीएचडी सब समझ सकते हैं, लेकिन ये कैसा टेंशन है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसको समझने में कष्ट हो रहा है, बहुत मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है और कैसे लिखूं मैं इसको, आई डोंट बिलीव इट दैट इज ट्रू। तो फिर वो ना पद्मावती उनकी पत्नी थी, उनको कहा कि मैं जरा बहुत त्रस्त हो गया हूँ, बहुत उद्विग्न हो गया हूँ, मैं जरा जब गंगा जी में जाके आता हूँ, थोड़ा सा गंगा जी को प्रार्थना करता हूँ, ठंडे पानी में बैठता हूँ, जरा स्नान करता हूँ, फिर कुछ प्रकाश पड़ेगा तो आता हूँ, तो निकल गए। अभी जयदेव जी को क्या संकोच हो रहा है कि भगवान राधा रानी के चरणों में रो रो कर बार बार अपना सर झुका रहे हैं और फिर भी वो नहीं मान रही है, इसका काव्य लिखने में उनको कष्ट हो रहा है, डिफिकल्टी इन कंपोजिंग दैट पर्टिकुलर पोएट्री। वो जाके गंगा किनारे गए और तुरंत कुछ देर में लौट के आए और कहते पद्मावती भूख लग रही है, भोजन कराओ। तो ठीक है अभी करती हूँ, दो मिनट लगेंगे, यानी थोड़ा सा लगेगा। तो उतने में वो अंदर गए और उन्होंने वो काव्य जो था ना, जो बचा हुआ जो नहीं कर पाए थे उसको तुरंत पूर्ण कर दिया। बाहर आए, पद्मावती ने उनको भोजन कराया, बहुत बढ़िया से भोजन किया उन्होंने, बड़े ही प्रेम से, और वो अभी आता हूँ करके चले गए। इसमें कुछ समझ आया होगा ना, आए बात किया अंदर गए काव्य पूर्ण किया फिर आए भोजन किया हाथ धोया और चले गए। जैसे ही गए तो फिर लौट के आए, बोले पद्मावती बहुत भूख लग रही है भोजन करा। बोले स्वामी अभी तो भोजन कराया, अभी तो आप आए थे, क्या कह रहे हैं, मैं तो कई देर कितनी देर से वो गंगा किनारे बैठकर चिंतन कर रहा था, थोड़ा मस्तिष्क को शांत करने का प्रयास कर रहा था, मैं बहुत देर के बाद में आया हूँ और आप कह रहे हो मैं आके क्या किया, मैंने बताओ क्या किया। तो वो कह रहे हैं कि आप आए आपने भोजन मांगा, फिर मैंने कहा दो मिनट में करती हूँ, फिर आप अंदर गए और आपने कुछ लिखा आपके लेखन में, फिर आप आए और मैंने आपको भोजन कराया। तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, अंदर गया था मैं जहां पर मैं लिखता हूँ, अंदर गए और देखा कि बहुत सुंदर मोतियों जैसे अक्षरों में, जो उनका अक्षर अलग है वो भी सुंदर है, लेकिन उनका अक्षर की जो पंक्तियां हैं वो ऊपर है और नीचे बहुत सुंदर मोतियों जैसे परफेक्ट अक्षरों में काव्य पूर्ति की है, जिसमें वो उन्होंने लिखा है कि कृष्ण झुका रहे हैं अपने शीश को, अश्रु बहा रहे हैं और राधा रानी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं रूठी हुई राधा रानी। तब जाकर इनको एहसास हुआ, अनुभूति हुई, कृष्ण स्वयं आए थे, माधव जी स्वयं आए थे, उनके इष्ट देव राधा माधव थे, उनका पूजन करते थे, तो माधव जी स्वयं यहां पर आए और जो लिखने में मुझे संकोच हो रहा था वो उन्होंने आके लिखा अपने मोती जैसे अक्षरों में। और जब उसे भाव विभोर हो गए, पद्मावती पद्मावती तुम तो कितनी भाग्यवान हो, साक्षात माधव जी तुम्हारे घर से आपके हाथ से प्रसाद पाकर गए हैं। इस तरह से दोनों बेहोश हो गए कि अपने झोपड़ी में माधव आए, ठाकुर माधव जी, और मेरे हाथ का प्रसाद पाए भोग पाए। दोनों बेहोश हो गए, भाव विभोर हो गए। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या है, जो जयदेव जी को लिखने में संकोच था उसे लिखने में भगवान को कोई संकोच नहीं था, भगवान को कोई संकोच नहीं है, कोई उनको ऐसा लगता नहीं कि ये मेरी बिलो डिग्निटी है या मेरे लिए कोई ऐसा ये न्यूज किसको पता नहीं लगना चाहिए। समझो अभी समझो किसी की बीवी ने या पति को डांटा बहुत बहुत जोरदार, लाइट एंड लेफ्ट एंड सेंटर दरवाजे बंद कर, है ना, तो किसी को समझ में आया तो कितना संकोच की बात है। तो वो किसी को बताएंगे नहीं कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने मुझे डांटा कल। लेकिन श्री कृष्ण को कोई संकोच नहीं है, यस मैं निश्चित रूप से एक बार नहीं अनंत बार जब रूठती है तब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देता हूं। और आगे जाकर तो ऐसी कथा है कि वो फिर भी नहीं मानती है, फिर वो ललिता देवी को बोलते जाओ उसको मनाओ, रूठी हुई है मना दो। ललिता देवी आवत जावत हार रही रही वो ऊपर नीचे, बोले चौगान की गेंद बना दिया मुझे आपने। पता है चौगान की गेंद क्या होती है? चौगान की गेंद मतलब फुटबॉल। फुटबॉल का क्या अवस्था होती है? एक व्यक्ति यहां से लात मारता है फिर वहां पहुंचता है, वो भी लात मारता है फिर यहां पर आ जाता है, फिर ये लात मारता है फिर वहां जाता है। तो उसका गेंद का अपना कोई पोजिशन नहीं है, जो लात मारेगा जिस दिशा में वही जाना है उसको। तो ललिता जी को उसने उन्होंने भेजा जाओ उनको मनाओ, तो वो वहां जा रही है तो वो और एक स्टेप ऊपर जा रही है मानगढ़ पे और कह रही है आई डोंट टॉक टू यू। फिर वो आती है वो नहीं मान रही, अरे जाओ ललिता जाओ। तो ललिता जी भी बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन, और हर बार जाती है तो वो एक और स्टेप पहाड़ पर चढ़ जाती है, फाइनली चोटी पर पड़ जाती है और देखने को तैयार नहीं है ललिता की ओर, क्योंकि वो ललिता बहुत प्रिय है लेकिन वो कृष्ण की ओर से सिफारिश लेके आ रही है इसलिए उसको देखना नहीं, आज मुझे नहीं देखना है। ऐसे करके बहुत देर तक ये चलते रहता है सिलसिला। फिर कृष्ण को लेकर आते हैं उधर और कोशिश करते हैं कि भाई उनका हाथ मिलाप किया जाए, उनका समेट लिया जाए, लेकिन वो देखने को ही तैयार नहीं है। जब वो यहाँ मुझे अभी भी याद है 1986 में राधानाथ महाराज ने हमको पहली बार मान मंदिर लेके गए थे, फर्स्ट टाइम, तो ये कथा बताई थी और मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है उसका। वो कह रहे हैं कि कृष्ण को ललिता जी यहाँ से लेके आ रही है और राधा रानी वहां ले गई, फिर राधा रानी ललिता जी कृष्ण को यहां से लेके आ रही है तो राधा रानी उधर ले गई, ऐसा उन्होंने वर्णन किया था। और फिर क्या करेगा, अभी सब कुछ कर दिया, अभी एवरीथिंग इज डन, कुछ परिणाम निकल नहीं रहा है। तो फिर अचानक ललिता देवी कृष्ण के कान में कुछ बोलती है और तुरंत दोनों चले जाते हैं। और कुछ देर बाद में राधा रानी रूठ कर बैठी हुई है और सामने एक पर्वत की चोटी है, उस पर एक सुंदर मोर आता है और वो नृत्य करने लगता है। तो ललिता जी कह रही है देखो देखो इतना सुंदर मोर आया है, नहीं देखने के लिए, अरे वो कृष्ण नहीं है मोर है मोर, अभी आपका पता है मैं आप कृष्ण पर उठी हुई। तो कृष्ण मोर बहुत अच्छा नृत्य करता है। तो फिर ललिता बोलती है अभी तो कम से कम देखो, तो मुड़ के देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो डर होके बैठे, अभी ऐसा होके बैठे डर होके बैठे देखने लगते हैं। फिर मोर का बड़ा उत्साह आता है कि राधा रानी देख रही है, बहुत नृत्य करता है सुंदर से। तो वो मोर नृत्य करते ही जैसे जैसे मोर नृत्य करता है ना कभी भी, तो आकाश में बादल जमा हो जाते हैं और ऐसी मधुर मधुर गड़गड़ाहट होने लगती है और उसको कहते हैं वारी बिंदु, यानी सॉफ्ट रेन स्टार्ट्स, जस्ट टू इट्स नॉट डिस्टर्बिंग रेन, बहुत मुलायम ऐसे यू कैन बेर इट एंड यू कैन स्टिल बी देयर आउटसाइड, ऐसे वारी बिंदु गिरने लगते हैं। फिर उस मोर को देखते ही ये सब होता है, फिर और मोर आ जाते हैं, ये मोरों का स्वभाव है, जैसे आकाश में देखते हैं ना बादल आगे तुरंत वो आ जाते हैं नृत्य करने के लिए, और सब लोग नृत्य करते हैं उस मोर को साथ देते हैं और ये मोर का नृत्य बहुत जोरों से करने लगता है। फिर मोरनी आती आ जाती है सब, और मोर मोर नृत्य करने लगते हैं। हाँ अभी राधा रानी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वो बहुत गौर से देख रही है। एक समय ऐसे आता है कि राधा रानी अपने स्थान छोड़ती है और वहां चले जाती है जहां पर वो मोर नृत्य कर रहे हैं, और वो तो राधा रानी है और ये मोर नाच कर रहे हैं। तो राधा रानी मोरनी बनती है, मतलब मोरनी जैसी बनती है और साथ में नृत्य करने लगती है। फिर मोर और मोरनी मिलकर बहुत जोरदार नृत्य करते हैं बहुत समय के लिए। और आपने पता नहीं ड्रामा में कभी देखा होगा तो वृंदावन में जाएंगे ना तो आपको कई दुकानों में वो चित्रपट मिलेगा कि मोरनी ऐसे खड़ी है और मोर ऐसे खड़ा है, तो ये ऐसे हो रहा है एक स्ट्रक्चर, एक चित्रकृति हो रही है, इसमें ये हाथ यहाँ से यहाँ थे, इनका लेफ्ट हैंड इनका राइट हैंड, और ऐसे जो मोर का जो पंख है ना उसका फैला हुआ है और बीच में जो चेहरे हैं, तो वो लास्ट में वो पोजीशन में मोर मोरनी का नृत्य होता है ना वो उस पोजीशन में एंड होता है, इट्स द लास्ट पोजीशन लास्ट पोस्टर। तो जब वो चित्रपट जो आकृति आखिर में होती है उसमें बहुत निकट आते हैं, तो राधा रानी को पता चलता है कि ये मोर नहीं है ये कृष्ण है। तो तब तक तो पूरा रूठना उठना सब समाप्त हो गया ना, ऑलरेडी फिनिश्ड। तो देखिए कृष्ण राधा रानी को रिझाने के लिए क्या क्या करते हैं, और ये सब करने के लिए वो ब्रज में आते हैं, क्योंकि तो बाकी जगह पर वो वैकुंठ में या द्वारका में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कोई पढ़ा है क्या रुक्मिणी और कृष्ण द्वारकाधीश मोर बनकर नाच रहे हैं द्वारका में एक कुंज में, ऐसा नहीं होता है। तो ऐश्वर्य भाव है वहां पर, भगवान अपने पोजिशन में है, विद डिग्निटी इज देयर, और धारा प्रेम वहां पर भी है, लेकिन वो अपने एक लेवल में है। हाँ, उसमें वो जाकर माखन चोरी करना, किसी के घर में जाकर किसी किसी के बालक को चिमटा निकालना जो पड़ने में सोया हुआ है, मक्खन नहीं मिल रहा है उसको चिमटा निकाला जा रहा है, कान में पानी डाला जा रहा है। हाँ, कान में सोए हुए बालक के कृष्ण पानी डालते हैं, है तो एक्सप्रेस इज एंगर, ना क्रोध व्यक्त करने के लिए, और फिर भी नहीं गुस्सा कभी आता ना तो मूत्र विसर्जन कर देंगे गोपी के घर में और चले जाते हैं। तो ये सब काम केवल ब्रज में होता है, ताकि भगवान ना अपनी भगवत्ता को छोड़कर कुछ कार्य करना चाहते हैं। यू वांट टू जस्ट बिकम ऑर्डिनरी बॉय, ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, वो भगवान का जो होता है ना पोजिशन, वो उनको छोड़कर एक निजी और क्या कहते हैं उसको प्राइवेट जीवन उनको बिताना है, इसलिए ब्रज में आते हैं। और इस सब के अंदर ग्वाल बाल उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं और उनको दंड भी देते हैं, उनको उनके कंधे पर चढ़कर राउंड लेते हैं हारने के बाद में, है ना, कोई गेम खेलेंगे, हार गए तो फिर कृष्ण को ऑपोजिट पार्टी को उनके कंधे पर लेकर घुमाना है, और बराबर कहते हैं देखो जब मैं हार गया था तो मैंने तुमको अच्छा राउंड दिया था, अब तुम शॉर्ट राउंड क्यों ले रहे हो, लंबा अच्छा राउंड दे दो, अभी एकदम प्रेम से दो ऐसे ऊपर से सीधा मा डांट रहा है उनको। उसके बाद माता का प्रेम है, अभी अगर कुंती देवी को कभी देखा है आपने कृष्ण को डांट रही है, कभी देवी को देखा है आपने मथुरा में कृष्ण को डांट रही है, किधर थे तुम इतने दिन, हाँ मैं कब से तड़प रही वहां पर, देखा है वो तो ऐसा प्रेम से एकदम ऐसा सम्मान के साथ कह रही है, अगर हो यहाँ पर आप आपको उनको संस्कार दे रहे हैं, डांट नहीं रही है। लेकिन ब्रज में जब आते हैं ना वो तो यशोदादी डांटती है उनको, हे स्ट्रीट बॉय फड़क छाप। जब वो खेलते हैं मट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, समय पर भोजन करने के लिए नहीं आते हैं, तो यशोदादेवी डांटती है उनको और वो डरते हैं उनको, देखो डंडा की उठाया ना यशोदा देवी ने तो क्या वर्णन आता है कृष्ण भगवान कांप रहे हैं। अब देवता देख रहे हैं, अरे साक्षात मूर्तिमान भय भी जिनसे भयभीत है, वही सीधी सादी माँ के डंडे से डर रहे हैं, कांप रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और बाद में कहते हैं कि समझ में तो नहीं आ रहा क्यों होता है, लेकिन ये दृश्य मेरी आंखों के सामने हमेशा बना रहे, ऐसे बोलते हैं क्योंकि इतना मधुर प्रेम का उसमें है ना अंतर्भूत है उसके अंदर प्रेम, कि जिस प्रेम को वो देख रहे हैं कि माता के लिए प्रेम से वो डर रहे हैं, आउट ऑफ हिज चॉइस वो डर रहे हैं। और वैसे ही जो किसी की पकड़ में नहीं आते, ध्यानी लोग ध्यान कर रहे हैं अनंत जीवन तक तपस्या कर रहे हैं, और ज्ञानी लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उनको वेदों में कहाँ है, वेदों में ढूंढकर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, वेदों को भी पता है वेद रूपी जो देवियां हैं वो भी भगवान के पास जाती है, भगवान आपने हमको ऐसा बनाया है कि हमारे में से आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, वी कैन फाइंड यू, नोबडी कैन फाइंड यू इन अस, दैट मींस वेदा, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। फिर तो भगवान ने उनका एक अच्छा चैनल बनाया उद्धार का, तो कभी और बताएंगे आप। तो वो कृष्ण भगवान जो उनकी गोपियां हैं ना उनके शरण में जाते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि सारे लोग तपस्वी ध्यानी योगी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना उनको भगवान के चरणों से जो कई नाखून है ना उनके चरणों में है ना 10 नाखून है, उस हर एक नाखून से अनंत किरण आभा निकलती रहती है ब्रह्म ज्योति, उसमें से एक किरण भी दिखाई नहीं पड़ता है अनंत किरणों में से। और वो जो कृष्ण है जिनके चरणों के अनंत किरणों में से एक भी किरण ध्यानी योगी तपी इनको दिखाई नहीं पड़ता है, वो पूरे कृष्ण जिनके वो चरण है जिनमें से किरण निकलते हैं, वो पूरे कृष्ण को गोपियां अपने लटकन में बांधती हैं और नचाती है उनको, चचिया पर छाछ के लिए अहिर की छोरियां नचावे, यानी जो गोपियां हैं गुर्जरी हैं वो आप ना चुल्लू भर पानी, हमारे हिंदी बहुत फेमस है ना चुल्लू भर पानी, उसको ब्रज में छचिया कहते हैं, छचिया यानी उतना छाछ या दही जो दही जमाने के लिए काफी है। आप भी जो एक पात्र दही लिया, दूध लिया, तो कितना डाल दें, एक चम्मच डाल देना, तो वो उसको कहते हैं चुल्लू यानी चचिया। उतने से छाछ के लिए कृष्ण भगवान को लंबे लंबे समय से नाच करवाते हैं। और चाहिए और नाच, फिर वो और थोड़ा ठमुक ठमुक के नाचेगा, फिर नाचते नाचते गिर जाएगा, छोटा भी है ना वो, तो गिर जाएगा, सब गोपियां ताली मार के हंसेगी, तो फिर थक के आएगा और दो, तो थोड़ा सा देंगे उसको और दो बोलेंगे, तो और नाचो बोलेंगे और नाचेंगे। अब सोच सकते हैं परम ब्रह्म परात्पर भगवान गौलोकेश्वर वो ब्रज में आकर इन गोपियों के घर में जाकर भिक्षा मांग रहे थे, कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल, इतनी शक्ति है प्रेम के अंदर। वो कहते हैं कि मुझे वैकुंठ का ऐश्वर्य इतना नहीं भाता है, लेकिन मैं इन गोपियों के घर में आकर चोरी करके ये छाछ पीना चाहता हूं, इसी के लिए तो आया हूं मैं, और मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, उनकी डांट भी बढ़िया लगती है। वो कहते हैं कि जब गोपियां डांटती है ना मुझे, हाँ, तो मुझे वेदों के अंदर लिखे गए जो श्लोक है ना मेरे स्तुति पर, वो भी बहुत कड़वे लगते हैं गोपियों की, जब गोपियां डांटती हैं तो वो जो डांट है उनकी वो इतनी मीठी है कि लगता है सुनते ही रहूं मैं। यहाँ पर देवता लोग, ऋषि, ब्रह्मा सभी लोग बड़े बड़े श्लोक गाते हैं तो मुझे बोर हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है बृहद भागवतामृत में कि ब्रह्मा जी, इंद्र जी आके अपराध करते हैं, फिर उनको अनुभूति होती है कि हमने अपराध किया, दे रियलाइज, उसके बाद में फिर वो बड़े लंबे लंबे श्लोक गाते हैं स्तुति में। और उसमें कृष्ण कहते हैं कि अरे बहुत लंबा 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 40 श्लोक ब्रह्मा जी ने गाए हैं, पता है आपको 40 श्लोक, 10th चैप्टर में, 10th कैंटो 14th चैप्टर में 40 श्लोक है उनके। कभी कभी हमको भी सुन के बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, बोले जल्दी खत्म करो, स्किप करो इसको, लेकिन नहीं, बहुत पावरफुल श्लोक है, पढ़ना चाहिए उसको। लेकिन कृष्ण का उसमें क्या विचार है, क्योंकि कृष्ण एक साल के लिए उनके जितने भी बालक थे उनके साथ नहीं रहे, ब्रह्मा जी उनको लेके गए थे ना, और एक साल के बाद में उन्होंने उनको वापस कर दिया है। तब तक तो यही खुद ही बाल बाल बनकर डोल रहे थे सब जगह पर। इतने समय के बाद में ब्रह्मा जी ने जब पश्चाताप हुआ, तुरंत पहले बालकों को लाके दिया, और वो बालक जाके पोजीशन लेके बैठे जमुना जी में, अभी आएंगे अभी आएंगे, तो ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और कृष्ण वहां पर खड़े ऐसे पेड़ को खड़े, पेड़ के सहारे, कभी समाप्त हो गया, बाल बाल इंतजार कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने बृहद भागवतम में लिखा है। क्या आई वॉज ईगर टू मीट माई फ्रेंड्स एंड दिस फेलो इज गोइंग ऑन एंड ऑन, इसको प्रेम कहते हैं, और वो प्रेम को चखने के लिए वो आते हैं। और राजा रानी उस प्रेम की परिसीमा है, बाकी गोपियों पर प्रेम करते हैं, घर में जाके चोरी करते हैं, रात को बुलाकर नृत्य करते हैं, लेकिन उसमें से भी वो सब गोपियों को छोड़ते हैं और वो राजा रानी के साथ में अकेले जाकर निधिवन में निवास कर रहे हैं। हम सब पढ़ते हैं ना बीच में, जब पहली बार रासलीला हुई थी तो सब गोपियों को भगवान ने बहुत सेवा किया। अभी रात अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट अपना वार्मिंग अप चल रहा है, हम सब साथ में आए हुए हैं, परीक्षा हो गई है, वो सब परीक्षा में पास हो गए हैं, भगवान ने परीक्षा लिया ना उनका, क्यों आए हो रात में, अरे किसी की पत्नी हो, किसी की ये हो, किसी की वो, आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए, आपका ड्यूटी है, आपको कैसे बीच में रात में आते हो आप, तो उन्होंने फिर सब अच्छे उत्तर दिए और भगवान ने सोचा ठीक है। फिर रासलीला आरंभ नहीं हुई, भगवान ने किसी के घुंघरू बांधे, भगवान ने किसी के पैर धोए जमुना जी का जल लाके, भगवान ने किसी के पैर दबाए, भगवान ने बहुत सारी चीजें की, उसी में से उनको गर्व हो गया कि देखो मैं कितनी स्पेशल हूं, कृष्ण मेरे साथ है, अकेले के साथ, भाई भाई ही वॉज विद एवरीबडी, सबके साथ थे, लेकिन वो इतनी मग्नता थी कि उनको लग रहा था कि मेरे साथ है, कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब जप करते हैं तो हम सब दुनिया के बारे में सोचते हैं सिवाय कृष्ण के, वी थिंक ऑफ द होल वर्ल्ड एंड ऑल द एक्टिविटीज एक्सेप्ट कृष्ण। और गोपियां दे गिव अप एवरीथिंग एल्स बट कृष्ण, आई थिंक ऑफ ओनली कृष्ण, इतना सोचते हैं कृष्ण के बारे में कि मेरे बगल के गोपी के साथ भी कृष्ण है ये भी उनको नजर नहीं आता है, और लगता है कि मेरे ही साथ में है, तो सबको थोड़ा सा गर्व हो गया कि मैं कितनी स्पेशल हूं, सबको छोड़ के मेरे साथ में है, तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। कृष्ण को ना भले वो गोपियां हों लेकिन वो गर्व उनको अच्छा लगता है, गर्व एक ऐसी वस्तु है जो कृष्ण से हमको दूर कर देती है, बहुत दूर, विचार भी नहीं कर सकते इतने दूर चले जाते हैं हम जैसे भी भगवान को खो बैठे ना उसी अहंकार की वजह से। तो भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन अंतर्धान होने पर भी राधा रानी को लेकर चले वो, सब गोपियों को छोड़ दिया उन्होंने। फिर राधा रानी के साथ चल रहे हैं, फिर कुछ जगह पर चार चरणों के चिन्ह हैं, और उसके बाद में दो ही चरणों के चिन्ह बचते हैं, लेकिन दो अभी वो दो चरणों के चिन्ह पहले चार वाले चरणों से अधिक गहरे हैं। तो गोपियां ढूंढ रही है, गोपी की सब गीत गा रही है उसने, जिसके चार चरण चिन्ह हैं, तो देख रहे हैं हाँ ये अपनी सबसे प्रिय गोपी को लेकर जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं अरे वो कहाँ गई, नहीं अभी वो थक गई होगी ना, इसलिए उसको कंधे पर लिया होगा, इसलिए ये दो चरण कमल जो है वो गहरे हो गए। ऐसे करते करते वो ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन फिर राधा रानी बहुत थक जाती है। तो एक आश्रम में वर्णन दिया है कि उस समय कृष्ण राधा रानी को लेकर निधि बन गए और पूरी रात्रि उन्होंने राधा रानी के साथ वहां बिताई लीला करते हुए, और फिर भोर के समय लौट के आए हैं गोपियों के बीच में, ऐसा एक वर्णन आता है। फिर बीच में क्या होता है, फिर राधा रानी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं, मुझे अभी बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे महल में तो मैं चलती भी नहीं हूं तुम मुझे इतना चला रहे हो। तो वो कहते हैं बैठो कंधे पर बैठो, और कंधे पर बैठने में झुक जाते हैं, और राधा रानी बैठने के जाती है तो कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। फिर वो रोने लगती है, फिर गोपियों को मिलती है, फिर आकर वो कृष्ण को मिलते हैं। तो उसमें भी अनया राधिता नूनम, वो जो गोपी है जो कृष्ण को सबसे प्रिय है वो राधा रानी, तो उनका स्थान समझना और कृष्ण की उनके लिए भावना क्या है समझना बहुत कठिन है। और ये सारी जो भावनाएं हैं, ये सारा जो प्रसंग है, जो अनेक प्रसंग हैं, वो सब बरसाने में प्रकट होते हैं। बाकी जगह पर भी होता है लेकिन इतना उत्कट नहीं होता है, इतना तीव्र नहीं होता है। सब जगह गोपियां और राधा रानी भगवान से मिले, वृंदावन में मिले हैं, वहां पर राष्ट्राचार्य है, लेकिन फिर भी बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन, ये जो चार स्थान है और उनका जो एरिया है बीच का, तो बिजवारी गांव भी आता है, उसमें बहुत सारे स्थान आते हैं, संकेत भी आता है उसके अंदर, उसके अंदर बहुत सारे सरोवर आते हैं, प्रेम सरोवर भी है, संकेत वन भी है उसके अंदर, राजमंडल है, झूला है, ललिता कुंड है, और बहुत सारी चीजें हैं, राधा रानी का ससुराल है, फिर कोकिलावन है जहाँ भगवान कोकिला मंत्र दोनों मिलते हैं और गाते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं राधा रानी के साथ में उतना उत्कट संबंध करने के लिए आए हैं। जैसे हमारे घर में ना कैसे होता है ना, बहुत बहुत कमरे जिसके होते हैं, बहुत बड़ा घर होता है, तो उसके अंदर एक बाहर की जगह होती है जहाँ पर लोग आते हैं, दूध दूध देके जाते हैं, कोई पुष्पन पोस्ट लेके जाता है तो वहीं पर उसको बिठाते हैं, और कोई व्यक्ति थोड़ा फ्रेंड नेबर आया तो उसको थोड़ा सा आगे वाले एरिया में आके बिठाते हैं, बात करते हैं कैसे आना हुआ, चाय पियो। फिर और कोई निकट का व्यक्ति आता है तो फिर उनको हॉल में लेके आते हैं और उनको वहां पर सत्कार करते हैं, लेकिन कोई एकदम निजी एकदम क्लोज फ्रेंड आया तो उसको बेडरूम में भी लेके जा सकते हैं, अंतःपुर में, और वहां पर फिर प्रेम की चर्चाएं होती है, उसको सब किचन भी दिखाएंगे आप। वैसे अगर ब्रज भूमि अगर एक महल है तो उसके अंदर अंतःपुर बरसाना नंदगांव मोस्ट प्राइवेट एरिया, यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं है, कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक कि जब गोपियों के साथ लीला चलती है तो माँ यशोदा नंद महाराज भी वहां पर नहीं आ सकते, नो एंट्री, बिकॉज वो अलग भाव है पूरा। तो उसको बनाने के लिए भगवान ने क्या किया कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप बताइए मुझे ब्रज में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस किसका था? यस, ब्रज के लीला में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस किस चीज का था? असुरों का है ना, कंस के द्वारा भेजे गए असुरों का। अब इधर बाल बाल खेल रहे हैं, अच्छी तरह कूद रहे हैं, जो कुछ डाली से कूद रहे हैं जमुना जी में, जमुना जी से बाहर कूद रहे हैं, जमुना जी में पानी उछाल रहे हैं, क्या क्या हरि बोल राधे श्याम, बहुत सारा आनंद हो रहा है। अचानक नगासुर आ गया, अभी बंसी बजा ही रहे हैं रासलीला के लिए, गौरीशासुर आ गया गोवर्धन में, है ना, कैसा सिचुएशन है देखो आप, इतना आनंद हो रहा है भगवान के साथ में, इतना निजी संग प्राप्त हो रहा है, हाँ नो लॉकडाउन ओपन सब लोग मिल रहे हैं भगवान से, मशीन बजान चल रहा है, कोई चोटी खींच रहा है, कोई दबा खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है, हाँ कोई मुरली लेके उड़ा रहा है और छीन रहा है भगवान की, इतने में राक्षस आता है, तो बड़ा डिस्टर्बेंस है ना। अगर वो ग्वाल बालों के साथ में ठीक है, गौचारण में भी ठीक है, लेकिन अगर गोपियों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है उसके अंदर आया तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. भगवान ने क्या किया, राधा रानी ने क्या किया विशेषता से, इसमें हमको राधा रानी की शक्ति का आनंद, मतलब शक्ति का अनुभव आएगा. तो कंस एक बार, फिर लंबी कहानी है छोटी कहानी बताता हूँ. कंस प्रवेश के एक बार ढूंढते ढूंढते कहाँ गए गोकुल से, सब मेरे राक्षस लोग गए वापस आ गए कि गोकुल में को है नहीं, ट्रांसफर हो गए वो. तो आगे आ गया उत्तर दिशा में जाते 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 ये बरसाने पहुंच गया. पहले सेनापति पहुंच गए, वो बेचारे पत्थर हो गए, हाऊ बुला हुआ है ना, वो सांडिल्य मुनि का शाप था तो वो बेचारे पत्थर हो गए. तो बाद में यशोदा ने उसको अच्छा इस्तेमाल किया कृष्ण को डराने के लिए. तो उसके बाद कंस आया काले घोड़े पर बैठ गया. तो काले घोड़े पर बैठ के आने के बाद में एक जगह है वहां पर भानुखर, कितने लोगों ने देखा है उस स्थान भानुखर, यानी बड़ी बहुत हमारे कैंप के एकदम बाजू में है प्रभु जी, एकदम बाजू में. वो कृष्णानु महाराज के अनेक निजी कुंडों में से एक कुंड है भानुखर, कृष्णानुखर भी कहते हैं इसको, खर यानी जलाशय. तो उसमें राधा रानी अपने गिने चुने सखियों के साथ में स्नान करती है, उनका प्राइवेट लीला है. तो उसमें आ जाता है किनारे, क्या कहें आपको, अभी आप गर्ग संहिता पढ़िए ना तो आपको पता चलेगा कंस कितना पराक्रमी था, कितना बड़ा दिग्विजय वीर था वो. रावण उसके सामने कुछ भी नहीं था, रावण को शिव धनुष भी हिलाने में तस्ते मस्त नहीं कर सका वो, नॉट इवन an इंच ही कुड मूव शिव धनुष. और वो भी शिव धनुष कौन सा था, जो शिव और विष्णु के युद्ध में शिथिल हो गया था वो, विष्णु ने जो हुंकार दिया था ना तब ये शिव का धनुष जो है वो पावरलेस हो गया था, ऊर्जाहीन हो गया था. वो धनुष जनक महाराज के पास था. तो आप सोच सकते विष्णु धनुष कितना बलवान होगा, तो वो धनुष को हिला भी नहीं सका था रावण. लेकिन परशुराम ने, परशुराम को जो धनुष विष्णु ने दिया था क्षत्रियों का संहार करने के लिए, खुद का ऊर्जापूर्ण शिथिल नहीं ऊर्जापूर्ण धनुष दिया था, वो कार्य होने के बाद में उनके पास था, उन्होंने फेंका कंस के ऊपर और कंस ने उसको झेला और 100 बार उस पर प्रत्यंज चढ़ाई. तो परशुराम जी बड़े खुश हो गए, बहुत क्रोध में आए थे कि अरे मेरा महेंद्र बहुत को धीरा हिला रहा है. तो देखा करे इतना बड़ा वीर है, पहले प्रणाम भी किया दंडवत किया, फिर धनुष ये लो ऐसे उठाया, इतना वीर बल का अगर गर्व है इसको उठाओ, उठाया 100 बार प्रत्यंज चढ़ाया. तो परशुराम ने कहा दिस इज गिफ्ट फॉर यू, रखो अपने पास. तो कितना बल था कंस के पास सोचो आप, पूरे विश्व में सब जगह पर सब दिशाओं में विजय प्राप्त किया था. ये सब जितने पढ़ते ना हम लोग तो भागवत में, अरिष्टासुर बकासुर अगासुर पुतना शंबरासुर बोलते जाओ आप, जितना बोलना है सबको वश में कर कर रखा था, अपने अपने जगह पर बुला के अपने मथुरा में सेशन किया था ऑन कॉल, कभी भी बुलाओ कॉल आना चाहिए आपको. कंस को त्रिवित वो था ना, क्या नाम, तृणावर्त, 1 लाख योजन 8 लाख मील आकाश में लेके गया था, और कृष्ण को कितना लेके गया था वो 10,000 मील केवल. कंस को 1 लाख योजन 8 लाख मील आकाश में लेके गया था और वहां से कंस ने उसको पटक दिया था जमीन पे और फिर बोला सॉरी सर आई एम योर फ्रेंड. वो कंस है अभी, मैं आपको थोड़ा सा वर्णन किया, कितना बलशाली और कितना पावरफुल था वो, इज अ वर्ल्ड चैंपियन था वो. कूला पीर को सुंड से पकड़ के ऐसा घुमाया था और फेंक गया था उसको. जरासंध भी आश्चर्य हो गया, बाप रे इसके अंदर 1,000 हाथी का बल है वो कूला पीर के अंदर, उसको किसने फेंका. तो बोला वो कंस नाम का आदमी उधर प्रैक्टिस कर रहा है, कुश्ती का प्रैक्टिस कर रहा है. और ये कूला पीर को देखकर चारों मुस्टिक सब प्रैक्टिस करने के लिए थे ना, वो भाग गए, अकेला खड़ा होके सिंह ऐसा सुंड पकड़ के फेंक दिया उसको. जरासंध ने बोला अभी बाय द वे युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत अपनी कन्याओं को उधर से उधर समझाया, दुल्हन बनाया और लेके आया और शादी करा दिया उसका तुरंत. बोले इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुझ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, उधर जमाई भी बना दिया उसको. ऐसा महापराक्रमी कम सभी उधर आया है भानुघर में खड़ा है. थोड़ा सा आपको मैंने पूरा परिचय दिया उसका, इंट्रोडक्शन दिया उसका. अरे क्या हो गया उसका, उधर वो कन्या बन गया तुरंत ऑन द स्पॉट, घोड़े बन के ऐसा आया है, मैं अभी मेरे शत्रु को मारने के लिए कहां पर है वो, ऐसे करके अचानक क्या हुआ, माय गॉड, पता चल गया उसको कि मैं स्त्री बन गया, और देखा तो घोड़ा भी घोड़ी बन गया. राधा रानी के प्रभाव से, राधा रानी के प्रभाव क्षेत्र में वो आया, फील्ड में आया। कोई युद्ध युद्ध नहीं किया, कोई सावधान करने की जरूरत नहीं है, अपना स्नान कर रही है, आराम से गोपियों के साथ स्नान कर रही है। और ये कन्या हो गया, बड़ा संकोच में आ गया वो, और गोपियों को समझ में आया, देखो लेडीज आर वेरी स्मार्ट, कंस को देखते समझ गए कि हमारी हमारे कंस महाराज अभी कंस नहीं गोपी बन गए। तो सब लोग पानी में से तालियां पीटने लगे, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। बोलते तो कितना संकोच है, देखिए आप गांव की लड़कियां जो मराठी में कहते हैं गवड़न, गवड़न ली जो गोबर उठाती है, दूध निकालती है, दही निकालती है, बेचती है, वो सिंपल कावड़ गर्ल्स नो, उनके सामने हंसी का विषय बन गया मैं, तो अभी क्या करेंगे। अभी दिग्विजय महाराज है, वापस जा सकते क्या घोड़ी पर बैठ के, घोड़ी चलने को तैयार है, जा सकते आप। अरे उधर अरिष्टासुर बैठा है, संपरासुर बैठा है, मंत्रीगण बैठे हैं, पुतना बैठे, बोले महाराज क्या हो गया आपको, व्हाट इज हैपेंड टू यू, क्या बोलेगा, ऐसा ऐसा हो गया, अभी क्या करूं, सर्जरी करना पड़ेगा। ही जस्ट कुडंट गो एनीवेयर, और वहां पर भी गोपी हंस रही है, तो चलो मोटेली गोपी मतलब मोटी, चलो अभी थोड़ा सा वजन ज्यादा है, चलो गोबर उठाओ, कंडे बनवाओ। अरे 6 महीने कंस कंस महाराज को वहां पर उन्होंने गोपी के रूप में कंडे लिखवाए, कैन यू बिलीव दिस। हाँ गोपी क्या करती है, अगर दूध निकाल दिए गाय का, गाय को साफ करती है, फिर गोबर इकट्ठा करती है, गोमूत्र सब मिक्सचर इकट्ठा करती है, उसको इकट्ठा करके ब्रज में बहुत सुंदर सीन है, बहुत सुंदर इकट्ठा करती है, टोकरी में डालती है, फिर बाहर जाती है, उसको ब्रज ब्रज में मिक्स करके उसको कंडे बनाती है गीले गीले, फिर उसको टील पर या किसी पेड़ पर ऐसा सुखा देते हैं उसको, फिर बैठते हैं, शाम को आते हैं, वो सुखा हुआ उठा के ले जाते हैं, और फिर वो एक गोबर का ही बनाया हुआ ऐसा घर होता है, पता है आपको, वो डिजाइन होते हैं उसके अंदर, उसके अंदर स्टॉक करते हैं उसको, फिर एक झोपड़ी है, सेकंड झोपड़ी है, ऐसे आपको उधर पर्वत पे ना बरसाने में बहुत सारी झोपड़ियाँ मिलेंगी गोबर की बनी हुई, उसके अंदर बहुत सारे वो कंडे बने रहते हैं, साल भर के लिए उसको यूज करते हैं, रोड पे भी लगा रहे हैं। वो सारा काम हमारे कंस महाराज ने किया, कंस ने गोपी ने किया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको सीखने के लिए, देखो गोपियां वही काम सालों साल इतने आनंद में कर रही है, कर रही कि नहीं, कंस रो रहा है करते समय, और वो प्रेम से, वो तो प्रेम से कैसे गीत गा रही है रोज, जो कल का कृष्ण ने लीला किया था आज का काव्य है उनके लिए, और वो गीत गाते हुए वो सब रोज दूध निकाल रहे हैं, सुधा मैया भी मंथन कर रही है तो वो गीत गा रही है, कल के लीला वाला गीत, गोपाल चंद्र ने बहुत सारे गीत दिए हैं ऐसे, जो कल लीला हुआ है आज तुरंत इस पोएट्री, और वो पोएट्री गाते गाते वो सब मंथन सब कुछ काम हो रहा है, इतना आनंद है उसके अंदर, और वही सारा काम कंस को प्राप्त है, लेकिन कंस रो रहा है, क्यों बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एनी रीजन बिहाइंड इट, भाव के अंतर, भाव में अंतर है, कॉन्शियसनेस गलत है उसकी। अरे इतना भाग्य था उसका, देखो आप राधा रानी के क्षेत्र में प्रवेश किया ना, तुरंत गोपी बन गया वो। अरे हम लोग इधर जन्म जन्म बिताते हैं, मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भक्ति मिले, और वो गोपी का जो सेवा है वो मिले, गोपी बनने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं, और वो एक झटके में गोपी बन गया, वही बच जाता तो एक गोपी बन जाता, वो नित्य करता भगवान के साथ में, लेकिन चेतना गलत है उसकी, इसलिए इतना बड़ा भाग्य प्राप्त करने पर भी वो दुखी रहा, रोता रहा, 6 महीने रोता रहा, वो सोचता रहा कब छूटूंगा, कब छूटूंगा, कब छूटूंगा। हमारा भी कुछ ऐसा ही स्थिति है, हमको भी वैसे ही भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन हम बोलते हैं इतना सारा छोला माला, इतना सारा नियम, अरे जन्माष्टमी क्यों आती है, दिन भर उपवास, हाँ ये उपवास, ये चतुर्मास, ये इतना कष्ट है इसके अंदर, हाँ ये मत खाओ, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, चाय मत पियो, ये नशा मत करो, इसके बिना जिंदगी क्या होती है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, चेतना को सुधारना चाहिए, चेतना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, क्योंकि चेतना सही होगी तो हर चीज आपको सही रूप में दिखाई पड़ेगी। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू लर्न टू सी द ट्रूथ एज ट्रूथ, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, सत्य को सत्य के रूप में ही देख पाना, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी हम लोग सत्य को असत्य के रूप में देख रहे हैं और असत्य को सत्य के रूप में देख रहे हैं, इसलिए हम लोग भौतिक दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारा जो जर्नी है वो किसमें है, कि वही सत्य को सत्य के रूप में देख पाना, ये हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का परफेक्शन है। तो कंस को इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होने पर उसने इसको दुर्भाग्य समझा, भाग्य को दुर्भाग्य समझा, और वो भाग्य को छोड़कर वापस दुर्भाग्य बनने का प्रयास कर रहे हो, वापस पुरुष बनकर जब अहंकार निर्माण होगा फिर जाएगा, फिर वापस रोग जमाएगा। छह महीने बरसाने में उसको कंडे लिखवाए गए गोपियों के द्वारा। फिर विश्वान महाराज आए एक दिन राधा रानी को लेकर आए, तो ये ना दंडवत प्रणाम किया राधा रानी को। तभी आपने पढ़ा है क्या, कंस ने कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया, बार बार आक्रमण करता था वो अपने से या दूसरे से, लेकिन कभी भी कंस को प्रणाम करने को, कृष्ण को प्रणाम करने नहीं आया, राधा रानी को उसने प्रणाम किया है और याचना की है छुड़वा दो छुड़वा दो, क्योंकि छह महीने के अंदर उनको पता चला था कि इनके स्वामी ये है, शी इज द लीडर ऑफ ऑल गोपीज, दे ऑल रिस्पेक्ट हर। और ये भी पता चला था कि इसके ही प्रभाव से मैं कन्या बना हूं, बिना शस्त्र के बिना युद्ध के बिना किसी के, इसके प्रभाव से मैं कन्या बना। आप सोच सकते हैं कृष्ण राधा रानी की शक्ति क्या है, नो एफर्ट्स। विष्णु कैसे हैं, सो रहे आराम से और सोकर पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं, जगने की भी जरूरत नहीं है। वैसे राधा रानी केवल अपने अस्तित्व से ही कंस को कन्या बना सकी। फिर राधा रानी ने पिताजी ने कहा कि देखो ये है ना, ये कंस महाराज है, ये हम उनको हर साल जाकर टैक्स चुकाते हैं, वी हैव टू गो एवरी ईयर। मैं अभी भी गया था टैक्स चुकाने, वसुदेव को मिलकर आया था, मैं नंद बाबा भी गए थे। छोड़ दो, हमको भी आगे भी चला ना अपना टैक्स चुकाना, ये राजा है हमारे। तो राधा रानी ने उंगली उठाई और बताया अब की बार छोड़ देती हूं, दोबारा आपके यहां से कोई आया या आप आए तो परमानेंट कन्या बना दूंगी, सावधान रहना। चलो अभी इस कुंड में स्नान करो, तभी वो ये सब जो लीला हुई ना ये जावट में हुई है, जावट में तभी वो अपने ससुराल में थी। जो किशोरी कुंड है वहां पर राधा कृष्ण लीला करते हैं, तो ये किशोरी कुंड है इसमें स्नान करो। मुझे अभी भी रिसर्च करना है कि छह महीने ने वो घोड़े ने क्या किया, रिसर्च कि वो क्या कर रहा था। तो फिर वो घोड़े के साथ में छलांग लगाया उसने और तुरंत पुरुष बन गया। देखो स्त्री बनने की शक्ति भी उसके अंदर है, राधा रानी के अंदर है, उसको दोबारा पुरुष बनाने की शक्ति भी उनके अंदर है। स्नान करा के पुरुष शरीर प्राप्त किया, घोड़ी घोड़ा बन गया और गीले वस्त्र में जो भागा वहां से सीधा मथुरा तक टर्न करके भी देखा नहीं। क्यों, अगर मैंने मुड़ के देखा और महारानी का मूड चेंज हो गया तो क्या होगा। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने यहां तक यश हासिल किया है पुरुष शरीर प्राप्त करने के विषय में। इस तरह से कंस भागा है, दोबारा कभी उसका आदमी या वो लौट के नहीं आया उसके अंदर। दिस इज कृष्ण, जहां जहां घूमने गए वहां वहां हर आदमी आया होगा, है ना, हरिष्टासुर आया, केशी आया, जो भी सब लोग आए, बल वो बचपन में बकासुर आया, उधर थोड़ा बचपन में अगासुर भी आया, कितने लोग आए उनको मारने के लिए। तो कंक्लूजन क्या है कि कंस को, कंस रियली भयभीत किससे था, राधा रानी से। कृष्ण से भयभीत था वो, क्योंकि काल बन के आएगा वह भी, लेकिन रियल भय राधा रानी का था, क्योंकि कृष्ण से काल के रूप में आएगा मारेगा, इस भय से भी होते हुए भी वो मारने के लिए किसी को उसको भेजता था, जा रे तू जा अभी तू जा तू जा, लेकिन राधा रानी के लिए रियल भय था। तो उसने कहा वापस गया भी नहीं, कौन है राधा रानी, उसको बाण मार के आओ, ऐसा बोला क्या उसने, नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा किया राधा रानी ने, ये लक क्यों किया, क्योंकि बरसाना क्षेत्र नंदगांव क्षेत्र जो है राक्षस विरहित हो जाए, ताकि ऐसी लीलाएं की जाए वहां पर जो बाकी जगह नहीं हो सकती, उसको अंतरंग लीला कहते हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास्टाइम्स। समय तो अपने पास नहीं है, लेकिन एक तो कम से कम पता होना चाहिए कि किस प्रकार की लीला करने के लिए उन्होंने कंस को कन्या बनाकर बाद में डांट कर भेज दिया, वो जगह को राक्षस रहित कर दिया, वो छद्म लीला कहते हैं उसको। छद्म लीला का अर्थ होता है कि वो भेष बदलकर बार बार बरसाना जाते हैं, क्योंकि नंदगांव में वो ज्यादा दिन ज्यादा समय टिक नहीं सकते हैं, राधा रानी के बड़े विरह में आते हैं वो, बार बार अगर जाना है तो बार बार कौन एंट्री देगा उसको, वहां पर सब लोग सखी भाव में, केवल सखी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, या तो कोई साधु बन के जा सकता है। तो कृष्ण की अनंत छद्म लीला है, यहां पर कृष्णा चूड़िया बेचने वाली बनकर जाते हैं, यहां पर कृष्णा फूल बेचने वाली बनकर जाते हैं, यहां कृष्णा ब्रह्मचारी बनकर जाते हैं, कभी साधु बनकर जाते हैं, कोई सन्यासी बनकर जाते हैं, कभी श्यामा सखी बनकर अनंत बार जाते हैं, अलग अलग बहाना बना के, और उसको कहते हैं छत बलिदान। यानी छत में यानी इट्स अ ड्रामा यू कैन से। तो किसी को पता चलता नहीं कौन है। तो ऐसे एक बार ना राधा रानी बहुत व्याकुल थी कृष्ण के लिए। तो ललिता कहती है कि मैं जानती हूँ तुम किसका विचार कर रही हो। तो तुम कैसे जानती हो? नहीं मैं जानती हूँ, तो बताओ बताओ कौन है वो। तो ललिता जी ना कृष्ण का चित्रपट निकालती है और दिखाती है। तो उसको लेकर राधा रानी शर्माती है, फिर उसी को लेकर सो जाती है। तो रात को उनको कृष्ण का स्वप्न आता है, फिर वो और व्याकुल हो जाती है। तो ललिता से कहती है कि मुझे इनसे मिलाओ, मुझे इनकी इनकी प्राप्ति होनी चाहिए, ये मेरे होने चाहिए। तो फिर वो एक गोपी है सत्यचंद्रानना उसका नाम है, वो गोपी आकर कहती है कि आपको ना तुलसी का व्रत करना चाहिए। देखो तुलसी के व्रत का, तुलसी के पूजा का कितना महिमा है, हाँ उनको पता चलेगा। इसमें वो सलाह देती है कि आपको ना वृंदा देवी का व्रत करना चाहिए, और पूरा वो समझाती है कैसा सा व्रत दिया हुआ। तो वो 6 महीने का व्रत था, और राधा रानी ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए तुलसी का 6 महीने तक व्रत किया, और हर एक महीने में एक एक वस्तु से वृंदा देवी के विग्रह को स्थापन किया था, उसका अभिषेक किया। हर एक महीने में हर रोज एक, यानी दूध का अभिषेक 1 महीना, दही का अभिषेक 1 महीना, फिर मधु का अभिषेक 1 महीना, फिर घी का अभिषेक 1 महीना, फिर फूलों के मकरंद और अलग अलग चीजें का वर्णन किया है वहां पर। 6 वस्तुओं का हर महीने में अभिषेक किया उन्होंने वृंदा देवी का, उपवास रखा, श्लोक कहे, बहुत सारा पूजन विधि 6 महीने तक उन्होंने किया है। 6 महीने के अंत में वृंदा देवी सिंहासन में बैठकर, दिव्य विमान में बैठकर आकाश से प्रकट हुई ऐसे, और बरसाने में उतरी, और राधा रानी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर पूजन किया उनका, क्योंकि प्रत्यक्ष आए ना, अभी तो मूर्ति थी, प्रत्यक्ष आए तो उनका चरण धोए, अभिषेक करवाया, उनको आरती की, पूजा की, भोग लगाया, सब कुछ किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। फिर पूरा पूजा उनकी होने के पश्चात वृंदा देवी ने कहा क्या चाहते हो, आशीर्वाद देना चाहते हो। तो राधा रानी कहती है कि मुझे कृष्ण मेरे हो जाए, मैं उनकी दासी बनू। तो वो कहते तथास्तु, बहुत ही कम समय में अभी कृष्ण आपके हो जाए। तो कृष्ण को पता है कि मेरी प्राप्ति के लिए राधा रानी ने वृंदा देवी का व्रत किया है, अभी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। तो कृष्ण गोप देवी का स्वरूप लेके बरसाने आते हैं। बहुत लंबी कहानी है वो, लेकिन छोटे रूप में कहा जाए तो बहुत बड़ा घूंघट ओढ़ के आती है और कहते कि नई नई ब्याही हुई हूँ, नंदगांव में मेरा विवाह हुआ है, तो मैंने सुना है कि यहाँ पर राधा रानी नाम की गोपी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेमी गोपी है, मुझे उनका दर्शन करना है। उसका स्वरूप देखकर, वे है तो कुछ नहीं ना, उसके उनके शरीर का सुगंध और उनकी उनकी जो व्यवहार, जो उनका क्या कहते हैं उसको उर्दू में कहते हैं अदाएं, है ना, उनका जो जैसे चल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, उनकी ध्वनि, उनका चलने का ढंग इतना मोहक था कि सारी गोपियां इकट्ठा हो गए उनके पास और बोले इनको, इस गोपी को राधा रानी को जरूर बुलाना चाहिए। और सब गोपियां उनको लेके जाती है और कहती श्री जी सुनो, एक ऐसी गोपी आई है जो हमारे हमारे अंदर सब कोई नहीं है, और कह रहे हैं कि नंदगांव से आई है। तो वो श्री जी के महल में लेके जाते हैं और फिर वो राधा रानी के सामने बैठकर उनका संवाद शुरू होता है। तो परिसर में आया ना वो, तो कहते हैं वो मैं जब आ रही थी ना तो वो काला कलूटा नंद का लाला मुझे मिला रस्ते में, और बहुत सताया मुझे उसने, कुछ शिष्टाचार नहीं है, कुछ वीरता नहीं है, कुछ व्यवहार अच्छा नहीं है, कुछ कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इतना तंग किया मुझे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि वो आपके पास भी आता है, उससे दूर रहो तुम, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसका संग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत निंदा करते कृष्ण। अभी आप क्या कहेंगे, वो एक एक बात कर रही है, वो ना उनका अभी समझो अभी आपके प्रिय भक्ति का कोई निंदा कर रहा है, तो हर एक निंदा के साथ में आपका प्रेम ऐसा वो क्या आता है एज ए इन डिफेंस, हाँ मैं इसको स्मैश करूंगी, उसके बातों को नष्ट करूंगी। तो राधा रानी सुनती है सभी, कोई कुल अच्छा नहीं है, कोई जाति अच्छी नहीं है, कोई वीरता नहीं है, कोई गुण नहीं है, सब बोल रहे थे ना। तो फिर राधा रानी ना ऐसे उनका मतलब एक रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि लव इन एंगर, लव इन डिप्रेशन, हाँ लव ड्यूरिंग योनिंग, ऐसे सब बहुत सारे प्रकार है उसमें, वो लव ड्यूरिंग एंगर प्रकट होता है वहां पर। और फिर राधा रानी गोप देवी के द्वारा कही गई हर बात को काटती है। आप कहते हो वीर नहीं है, अरे इतने से थे वो, तब पुतना को मार डाला 12 मील वाली, प्रलावंत को मारा, शक्टासुर को मारा, आप कहते वीर नहीं है। फिर कहते कोई साधना नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है, अरे दिन भर गवों के बीच में घूमते हैं वो, क्या हमारे लिए गवों के अधिक कोई प्रिय है, कोई गवों के अधिक वंदनीय है हमारे लिए। वहां पर राधा रानी गौ का गौरव करती है कि हमारा सबसे पूजनीय वस्तु कौन है, वो है गौ माता, और वो दिन भर गौ माता के बीच में घूमते रहते हैं और गौ माता के चरणों से उठी हुई धूल के अंदर दिन भर स्नान करते रहते हैं और दिन भर उन गवों के नाम का जप करते हैं, ऐसे नाम से बुलाते हैं उनको, गिनते गिनते कितनी गोपियां कितनी गोपी थी और सब बुलाते हैं उनको, कभी मुरली से बुलाते हैं, कभी उंगली से बुलाते हैं, कभी मुख से बुलाते हैं, अरे गोप गा अरे गोप देवी ये गौओं का नाम लेना कितना पवित्र है, जानती हूँ आप, गौओं का नाम लेने से जीवन भर की शुद्धि हो जाती है और परिपूर्णता प्राप्त होती है, आप कह रहे कोई इनके अंदर कोई साधना नहीं है, यही साधना सर्वश्रेष्ठ करते हैं वो, ऐसे करके एक एक भाग को काट देते हैं। और अभी अभी देखो कृष्ण को ऊपर प्रेम है, वो कृष्ण का डिफेंड कर रही है, जानते हुए ये कृष्ण है, और ये कृष्ण जो गोप देवी बने हुए ना उनको ऐसा ना वो प्रेम का प्राकट्यकरण देख के ही बिकम्स और वेल, अभी सामने देख रहे हैं ना वो कितना प्रेम से बोल रही है कृष्ण के प्रति, कितना प्रेम से डिफेंड कर रही है, हर एक बात को काट रही है, तो वो भाव विभोर हो जाते हैं। अभी भाव विभोरता में क्या होता है, उनको अपना गोप देवी का स्वरूप मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, हाउ टू मेंटेन, यू मस्ट टू से यस यस आई एग्री विथ यू, हाँ मैं ही कृष्ण, कैसे करे छद्म को, अभी छद्म को कैसे बनाए रखे, तो कहते हैं कि ओके अभी उनको ना वहां से जाना है क्योंकि ही कांट स्टे देयर इन लॉन्गर विद दिस सिचुएशन, तो कहते हैं कि इतना प्रेम करती हो उस छलिया से, उस क्या कहते हैं निर्गुण व्यक्ति से, यानी इसमें कोई गुण नहीं है, तो आपके अभी आखिर में परेशान करना चाहती हूँ, इतना प्रेम है ध्यान करो उसका, और सच्चा प्रेम है तो वो यहां प्रकट होना चाहिए, फिर मैं मानूंगी तुम उसको सही प्रेम करती हो। तो राधा रानी तो तुरंत आंख बंद करके ध्यान लगा देते, हमारे जैसा नहीं आंख बंद करते ही हरि बोल, पता नहीं ये सारी कथाओं में मुझे जब का कनेक्शन दिखता है, रिलेशन विद चैंटिंग इज ऑलवेज देयर। राधा रानी तुरंत बैठ जाती है लोटस पोजिशन में, तो ध्यान लगाती कृष्ण के ऊपर, आप सोच सकते हैं जब राधा रानी कृष्ण का ध्यान करती है तो वो कितनी सुंदर लगती हो, हाँ? इस निर्माण में सर्वोत्तम सर्व सुंदर व्यक्ति जो है वो उनके अभी ध्यान में है और वो ऑलरेडी सुंदर है, तो कैसे दिखती होगी वो, उसको देखकर गोप देवी रूप में जो कृष्ण थे बड़े मोहित हो गए और तुरंत वहां चले गए वो, और राधा रानी ध्यान में बैठी, जाते पूरा सब छोड़ निकाल लेते हैं, पूरा पल्लू वल्लू सब निकाल देते हैं और वापस मुरली लेके आ जाते हैं और कहते हैं अरे राधे मैं आपसे मिलने आया हूं, तो वहां खोल के देखती है अरे वो गोप देवी कहाँ गई, तो कहते हैं कि हाँ जब मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए तो वही काली कलोटी औरत जो है ना वो मुझे मिली, वो बड़ी नागिन जैसी है, उसका संग करना बड़ी नागिन जैसी है, केवल विष उगलती रहती है वो, इसलिए वर्ड अब घर का सही था, उतनी निंदा करती है वो, इतनी निंदा करती है, कभी उसका संग करना, मतलब ये भी साबित कर दे राधा रानी से कि वो गई यहां से और मैं आया, तुमने कहा था कि मैं अगर आपका ध्यान करूंगी और आप प्रकट हो जाएंगे मेरा प्रेम सच्चा है, तो राधा रानी ये कृष्ण की गोपदेवी वाली परीक्षा में पास हो गए राधा रानी और उनका मिलन पाऊंगा। अभी आप बताइए मुझे ये लीला के बीच में कोई अरिष्टापुर आ सकता है क्या, एनी वे यू कैन कम इन बिटवीन, एनी हॉल्ट इज देयर इन बिटवीन, एनी पॉइंट एनी गैप इज देयर, नो नॉट पॉसिबल। ऐसे एक बार कृष्ण भगवान श्यामा गोपी बनकर आए थे और उसके पहले दिन सब गोपियों ने उनके सब गहने चुराए थे, उनको खाना खिला खिला के इतना सुला दिया कि वो सोने के बाद में सारे गहने उतार कर, क्योंकि गोपियां भी तंग आ चुकी थी, रोज उसका किसी का मणि चोरी कर रहा है, किसी का यहाँ का मणि, किसी का इधर का मणि, किसी का कुछ, किसी का कुछ, रोज का रोज चोरी हो रही है, उनको सबक सिखाना चाहिए। एक दिन उन्होंने सारे गहने चुरा लिए और घर पे गए, कृष्ण माता बोलते किधर गए गहने तुम्हारे, सुबह जिसका श्रृंगार किया था, अच्छा तुम्हारा क्या हो गया, तो भैया मिल जाएंगे आप चिंता मत करना मैं लाके दूंगा। अगले दिन श्यामा गोपी बनकर पहुंचते हैं, सर नाटक करते हैं, सर नाटक करते हैं, बेहोश होने का नाटक करते हैं, तो ये सब परेशान हो जाते हैं और बेहोश क्यों हो रहे हैं, तो गोपी कृष्णा गोपाल बोलो गोपाल हे श्याम सुंदर, ऐसे वो बोल के गोपी बेहोश हो रही है, तो सब गोपियां कोई ईर्ष्या नहीं करती, इतना प्रेम है कृष्ण के लिए, नाम लेकर बेहोश हो रही है, उसको राधा रानी को मिलाना चाहिए। शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी अ पर्सन हु लव्स कृष्ण मोर देन हर। तो फिर वो राधा रानी के दहलीज में जाकर श्याम सुंदर बोलो,
श्याम सुंदर
तो गिर जाती है। पहली बार तो पानी चढ़क के जगती थी, अभी तो कुछ भी किया तो जगने को तैयार है। अभी वो सोच रही क्या करे, कुछ लोग हवा दे रहे हैं, कुछ लोग पानी छिड़क रहे हैं, कुछ लोग मंत्र बोल रहे हैं, कुछ लोग नरसिंह मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन ये गोपी लगती गई। तो ललिता विषय का हमेशा डिफिकल्टी में उनका एक मीटिंग होता है तुरंत, क्या करना चाहिए। तो कहते अरे हमने तो कल ही तो कृष्ण के सब गहने चुराए थे ना, क्यों ना राधा रानी को हम कृष्ण का सब गहने पहना कर कम से कम प्रस्तुत करें, कृष्ण मिलेगा बाद में, ठीक है अभी तो हम लोग एक ड्रामा कर सकते हैं ताकि ये मरे मतलब बचे, मतलब बच जाए, मरने से बच जाए, है ना। तो फिर ये बोलो आप देखते रहो उनको, मैं तुरंत जाके एकदम एक्सप्रेस श्रृंगार किया, सारे कृष्ण की वस्तुओं का, चोरी की वस्तुओं का राधा रानी को श्रृंगार किया, मुरली हाथ में दिया और ले आए उसको बाहर और खड़े किया उनके सामने, बोले गोपी उठो देखो कृष्ण आए। उस समय पर ऐसा घूंघट उठा के फेंक दिया ना, सब जंप मार के सब फेंक दिया अपना श्रृंगार श्यामा गोपी वाला, बोले ए देखो पकड़ा ना तुमको, बहुत होशियार बनते हो, हाँ मेरे गहने चुराते हो, जो खाना खिला के सुलाते हो, अब सब गहने चुराते हो, देखो रंगे हाथ पूरे हाथ, उतारो सब उतारो उतारो सब, खड़े हो गए। और फिर क्या अब तक सब सखा लोग भी आ गए थे, लोग भी तालियां पीट रहे हैं, तो एक एक सब गोपियां खड़े होकर एक एक गहना उतार रही है, कृष्ण को दे रहे हैं, सखा लोग उनको पहना रहे हैं, ऐसे पूरा वन बाय वन उतार के सारा पहन लिया और बाद में मुरली लिया, अगली बार ऐसे हरकत मत करना। ऐसी लीलाएं वहां ये बरसाना नाम अंतरंग उत्कट लीलाएं प्रेम की लीलाएं, हमें तो केवल प्रणाम करना चाहिए, उसको सुनने के लिए बोलने के लिए भी हम योग्य नहीं है, लेकिन बरसाना धाम की महिमा कितनी है, जो कृष्ण का दिल जीत लेती है ऐसा वो धाम है, और ऐसी वहां की रानी है राधा रानी वहां रहती है, और कृष्ण वहीं पर जाकर हमेशा हमारी भाषा में पड़े रहते हैं, मतलब इज ऑलवेज देयर, कुछ कर ही नहीं सकते, कभी कभी खड़े होकर देखते रहते, तो बोले क्या कर रहे हो भैया, बोले कंकड़ बिन रो, मतलब रस्ते के कंकड़ यहाँ से वहां कर रहे हैं, सब बोल रहे मन में क्या भाव है, राधा रानी आएगा तो कंकड़ लगेगा ना, इसलिए बाहर होते हैं, और आम जनता के लिए क्या भाव है, इज जस्ट डूइंग सम वर्क, यू नो समथिंग इज डूइंग, बट मन लगा है उनके अंदर जिसको देखने के लिए आते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, कितना राधा रानी को भगवान चाहते हैं, साकरी कोर है ना, साकरी कोर वहां से गहवर बन बहुत पास में है, और गहवर बन ऐसा उत्कट जगह है, क्या बताएं आपको, गहवर बन के अंदर इतनी लीलाएं हैं भगवान और राधा रानी की, उत्कट अंतरंग लीला है, उसको ना निवृत्त निकुंज कहते हैं, मतलब उसमें गोपियां भी जा सकती नहीं, ओनली दे डेकोरेट द फॉरेस्ट और राधा और कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, बाकी कोई जाता नहीं, ओनली दो दो जाते हैं राधा और कृष्ण, ऐसा गहवर बने हुए, नाम ही गहवर है, मतलब उत्कटता मोस्ट इंटेंस। तो ये साकरी कोर के पास में है, तो कृष्ण भगवान आज रात की लीला वहां होने वाली है गंगा देवी के निर्देश में, तो स्वयं आकर उसको फूलों से डेकोरेट कर देते हैं, ऊपर नहीं जमीन को भी, और इतना फूल लगाते हैं कि एक व्यक्ति भी अंदर सोएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना फूल भर के रास्ता में डाल देते हैं, और स्वयं जब राधा रानी के आने का समय होता है तो अचानक सबके नजरों से गायब हो जाते हैं और साकरी कोर में फूलों के नीचे सो जाते हैं, क्यों, ताकि राधा रानी आएगी और मुझे उनके चरणों का कृपा का लाभ होगा। राधा रानी चलकर आती है सखियों के साथ में और उनके छाती पर अपने चरण रखती है बिना जाने हुए, फिर पता चलता है कि कोई है, फिर वो देखते हैं हरे कृष्ण है, तो बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं कि अरे नहीं नहीं, तो वो कृष्ण बहुत प्रसन्न है क्योंकि राधा रानी के चरण को मेरी छाती पर, फिर उठते हैं उनको लेकर फिर गहवर बन में प्रवेश करते हैं, प्लान कुछ और है, कृष्ण वहां से आएंगे मैं यहां से आऊंगी, लेकिन अचानक कृष्ण पैर के नीचे मिल जाते हैं, इतना भगवान राधा रानी के कृपा अनुकंपा करुणा के अभिलाषी रहते हैं, इतना उनका जीवन संजीवनी स्वयं राधा रानी। तो हमारे जीवन में इसका रेलेवेंस क्या है, हमारे जीवन में इतना ही रेलेवेंस है कि हम उनको पहले पुकारते हैं और बाद में कृष्ण को पुकारते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पुकारेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। वी नो 100% वी नो, हमारे अंदर उतना प्रेम और भक्ति है किधर कि हम उनको पुकारे उनको मुड़के देखने की क्या जरूरत है, व्हाट लव वी हैव। बट हमारा हमें इस अवस्था में भी आशा है कि वो हमारी सुनेंगे, तो हम राधा रानी का नाम पहले लेते हैं, हरे कृष्ण। क्योंकि जब आप राधा रानी का नाम पुकारते हैं पहले, तो वो देखते हैं कौन मेरे राधा रानी को पुकार रहे हैं। जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, अपने कोई मैया मार्केट में जा रही है बच्चों को लेकर और मेला चल रहा है बहुत जोरदार, तो वहां के कहती है मेरा यहां पकड़ना, मेरा उंगली छोड़ना नहीं, यहां वहां देखना लेकिन मेरे उंगली को छोड़ना नहीं। और कोई पीछे से उस बालक को पुकारते समझो सुना सुधील है सुधील, हाँ भाई ए सुनील सुनील सुनील, तो सुनील पुकारने से पहले कौन देखेगा, मां देखेगी है ना, कौन मेरे सुनील को पुकार रहा है। इसलिए पहले बच्चा तो भटका हुआ उसका माइंड यहां वहां देख रहा है, वो नजारा देख रहा है, लेकिन सुनील का नाम सुनते ही पहले मां देखेगी, क्योंकि वो सोच रही मेरे सुनील को कौन पुकार रहा है। उसी तरह से आप अगर कृष्ण को पुकारेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, हरे राधे कहेंगे तो कौन मेरे राधा रानी को पुकार रहे हैं, तब क्या ना कृष्ण आपको देखेंगे। तो जप में ये चिंतन होना बहुत जरूरी है, जप केवल फिनिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं फिनिश कर देते हैं, आई फिनिश्ड माय 16 राउंड्स। लेकिन हमको जप करना चाहिए, और केवल जप नहीं करना चाहिए पुकारना चाहिए। नाम किसके लिए था, आज सुबह मैंने बात किया था उसके बारे में, नाम क्यों रखते हैं बताइए आप। आपका नाम राधेश्याम प्रभु रखा गया, क्यों, वो आपको पुकारने के लिए रखा गया है, ताकि मैं आपको पुकारूं और आप मुझे देखें और हम मिले और बात करें। किसी को भी पुकारने के लिए नाम देते हैं ना, नाम खाली खाली वो रजिस्टर करके देते नहीं है, नाम इज बेसिकली मेंट टू कॉल। और हमें भी नाम दिया गया है क्यों, ताकि हम पुकारे उन्हें और पुकार के उनका ध्यान आकर्षित करें, और ध्यान आकर्षित करके वो हमारे साथ जुड़े, फिर हमारे हृदय की कथा पूरी हो, निवेदन हृदय का निवेदन उनको करें और वो हमारी बात सुने, फिर हमारा कल्याण हो। इसलिए हमको ये नाम दिया गया है, नाम प्रभु क्यों दिया गया है, पुकारने के लिए दिया गया है। उसमें रहस्य की बात यह है कि उसको ऐसा अरेंजमेंट कर दिया गया है, ऐसे नहीं कहा कि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, ऐसा नहीं किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, बार बार हरे का अंतर अंतर्भाव उसके अंदर है, ताकि बार बार आप राधा रानी को पुकारते रहे और बार बार राधा रानी के बहाने कृष्ण आपको देखते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सारा चीज पुकारेंगे नहीं, खाली ऐसा मैकेनिकली बोलते रहेंगे, तो क्यों नहीं रिस्पॉन्स देंगे आपको वो, व्हाई ही वुड रिस्पॉन्ड यू, व्हाट इज द नीड, आप तो पुकार ही नहीं रहे ना। सबको पुकारना चाहिए, ये पूरा सोना माला है ना पुकारने के लिए। और आदर्श भी इतना भी समझ में आया ना काफी है, जिला विला छोड़ दो वो दूर की बात है, वो तो खाली पढ़ा और बताया याद करके बस, दैट्स ऑल, नो रियलाइजेशन। लेकिन ये आपको अनुभूति दे सकता है कि आप जब इस भाव से पुकारेंगे तो जरूर कृष्ण को आकर्षित करेंगे, और जरूर कृष्ण आपकी ओर देखेंगे और आपके जीवन का उद्धार होगा, इसके कोई संदेह नहीं है। राधाष्टमी का इतना भी मैसेज हमने ले लिया ना तो भी जीवन सफल है हमारा। बाकी क्या रिवील करना है आपको, क्या प्रस्तुत करना है, क्या अनुभूति दिलाना है, वो सब जुगल जोड़ी के हाथ में है। जो इच्छा मर्जी है वो हमको हृदय में अनुभूति दे सकते हैं, दैट इज देयर चॉइस। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू कॉल एंड कीप देम इन योर कॉलिंग रेंज ऑलवेज। और रेंज कैसे पैदा कर सकते हैं, भाव से, हृदय से पुकारने से। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, वो जब बालक माँ के लिए रोता है ना, कभी कैसे रोता है वो, कहीं भी माँ होगी ना सब छोड़ के बंद करके भाग के आ जाती है। वो हमारा रेंज तय करता है कि हमारा रेंज क्या है, कितने रेंज में भगवान हमको चाहिए, उतना आपको असहाय होकर पुकारना है। फिर कृष्ण कहीं दूर नहीं है, कृष्ण दूर क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर वो असहाय भाव नहीं है, कशिश नहीं है और प्रेम नहीं है, हमारे अंदर जरूरत नहीं है, वो असहायता ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो क्यों आए वो। जब वो असहायता होगी, आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तो भाग के आएंगे आपके लिए। लेकिन एक एक उस पर रहस्य है, जब वो राधा रानी का नाम हरे के रूप में पहले पुकारेंगे ना, तो राधा के पीछे कृष्ण स्वयं आपके पीछे पीछे भाग कर आएंगे। ये उनका श्लोक है वेदों में, पद्म पुराण में, धावत यैव स संभ्रमः, भ्रमित होकर उस व्यक्ति के पीछे वो भागते हैं जो उनके राधा रानी का नाम पुकारते हैं। तो हमारे लिए आसान हो गया ना ये, दिस इज गुड फॉर्मूला फॉर अस, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं उनको पुकारने की, तो ये फॉर्मूला से हम उनको भी अपना बना सकते हैं, क्योंकि राधा रानी आपके लिए उनको अपना बनाएगी, शी विल मेक ऑल दिस अरेंजमेंट, और वो इतनी शरूर नहीं है जितने कृष्ण है, अनन्य चिंतन तो माम ऐसे वो नहीं है, थोड़ा बहुत भी श्रद्धा होगी ना आपके अंदर वो अपना लेगी आपको, इसलिए जब करते समय ध्यान पूर्वक पुकारो, फिर कृष्ण कहीं दूर नहीं है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। Take prasad.
So you also finish prasad and come back. Yeah. So some people would like to come back and get second lecture to announce it. Do you have that?
Yes.
Yeah. We can go to Adhika 9:40.